का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं कृष्णा सोबती द्वारा लिखित कहानी बादलों के घेरे का दूसरा भाग। अब तक आपने सुना भुवाली की एक छोटी सी कॉटेज में लेटा लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ। पहाड़ी हवाएं मेरी उखड़ी उखड़ी सांस की तरह कभी तेज कभी हौले इस खिड़की से टकराती है। दरवाजे और खिड़कियों पर पड़े पर्दे मेरी ही तरह दिन रात सुबह शाम अकेले मौन भाव से लटकते रहते हैं। अपने इस छूटते छूटते तन को देखता हूँ और देखकर रह जाता हूँ। आज इस रह जाने के सिवाय कुछ भी मेरे वश में नहीं रह गया, सब अलग जा पड़ा है। अपने कंधों से जुड़ी अपनी बाहों को देखता हूँ, मेरी बाहों में लगी वे भरी भरी बाहें कहाँ हैं? कहाँ है वह सुगंध भरे केश जो मेरे वक्ष पर बिछ बिछ जाते थे? कहाँ है वे रस भरे अधर जो मेरे रस में भीग भीग जाते थे? सब था मेरे पास, सब था, बस मैं आज सा नहीं था। कंबल के नीचे पड़ा पड़ा मैं दवा की शीशियां देखता हूँ। वर्षों बीते, एक बार गर्मी में पहाड़ गया था, बुआ के यहाँ पहली बार उन आंखों सी आंखों को देखा था। नाश्ते की मेज से उठा तो परिचय करवाते करवाते न जाने क्यों बुआ का स्वर जरा सा अटका था। मन्नो से मिलो रवि, दो ही दिन यहाँ रुकेगी। सांस भरकर बुआ का वह दो दिन कहना किसी कड़ेपन को झेल लेने सा लगा। वह कुछ बोली नहीं, सिर हिलाकर अभिवादन का उत्तर दिया और जरा सा हंस दी। उस दूर दूर लगने वाले चेहरे से मैं अपने को लौटा नहीं सका। सब उठकर बाहर आए तो बुआ के बच्चे उस दुबली देह पर पड़े आंचल को खींच स्नेहवश उन बाहों से लिपट लिपट गए। मन्नो जी जी, मन्नो जी जी। बुआ किसी काम से अंदर जा रही थी, खिलखिलाहट सुनकर लौटी, कड़े हाथों से बच्चों को छुड़ाती ठंडी निगाह से मन्नो को देखती हुई ढीले स्वर में बोली, जाओ मन्नो कहीं घूम आओ, तुम्हें उलझा उलझा कर तो ये बच्चे तंग कर डालेंगे। मन्नो की बड़ी बड़ी आंखों की घनी पलके ना उठी ना गिरी, बस एक टक बुआ की ओर देखती रह गई। मन्नो धीमी गति से फाटक से बाहर हो गई थी। कुछ समझ लेने के लिए आग्रह से बुआ से पूछा, कहो तो बुआ बात क्या है? बीमार है रवि, दो बरस सेनेटोरियम में रहने के बाद अब जेठ जी ने वही कॉटेज ले दी है। नहीं नहीं बुआ, मैं धक्का खाकर जैसे विश्वास नहीं करना चाहता। रवि, जब कभी चार छह महीने बाद लड़की को देखती हूँ तो भूख प्यास सब सूख जाती है। उलझा उलझा सा मैं बाहर निकला और उतराई उतरकर झील के किनारे किनारे हो गया। जंगले पर हाथ टिकाए झील में नौकाओं की दौड़ देखता रहा, जैसे पानी के नीची सतह पर वही पीला चेहरा देखता हूँ, वही बड़ी बड़ी आँखें, वही बुआ की घरवाली मन्नो। दो चार बार मन ही मन नाम दोहराता हूँ, मन्नो मन्नो। घर पहुँचा तो बुआ बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली गई थी। बुआ लौटी नहीं। घड़ी घड़ी की टन टन के साथ नौकर ने खाने के लिए अनुरोध किया, खाना लगेगा साहिब। बुआ कब तक लौटेंगी? खाने को तो मना कर गई हैं। और जो मेहमान हैं? नौकर ने तत्परता से झुककर बोला, आपके साथ नहीं साहिब, वह अलग से ऊपर खाएंगी। सीढ़ियों पर आहट हुई और शायद अपने कमरे तक पहुंचकर खत्म हो गई। घंटे भर बाद मैं किसी की पैरों चली सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा जा रहा था। हौले से थाप दी, चले आइए। पर्दा उठाकर देहरी पर पांव रखा, मन्नो सूटकेस के पास खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं, सहज स्वर में बोली, आइए। फिर सोफे पर फैले कपड़े उठाकर कहा, बैठिए। बात करने को कुछ भी ना पाकर बोला, आप लंच तो? जी मैं कर चुकी हूँ। मैं जैसे कुछ कहलवा लेने को कहता हूँ, बुआ तो कहीं बाहर गई है, शाम से पहले ही नीचे उतर जाऊंगी। बुआ से कहिएगा एक ही दिन को आई थी, एक दिन और नहीं रुक सकेंगी। क्या करूंगी यहाँ रहकर? भुवाली के इतने बड़े गांव के बाद यह छोटा सा शहर मन को भाता नहीं। हम संग संग नीचे उतरे थे। फाटक से बाहर होते होते वह पल भर को पीछे मुड़ी, जैसे छोड़ने के पहले घर को देखती हो। टैक्सी खड़ी थी, सामान लदा। ड्राइवर ने उन कठिन क्षणों को मानो भाप कर कहा, कुछ और देर है साहेब। मन्नो ने इस बार कहीं देखा नहीं। कार में बैठी तो कुली ने तत्परता से पीछे से कंबल निकाला और घुटनों पर डालते हुए कहा, कुछ और मेम साहिब? नहीं नहीं कुछ और नहीं, धन्यवाद। और कार चल दी। विदाई के लिए ना हाथ उठे ना अधर हिले। देर बाद सीढ़ियों में अपने को पाया तो सामने मन्नो का खाली कमरा था। आगे बढ़कर बिजली जलाई, किसी अनदेखे भय से घबराकर नीचे उतर आया। सिरहाना खींचा, बिजली बुझाई और बिस्तर पर पड़े पड़े भुवाली की वह छोटी सी कॉटेज देखता रहा। रवि, बुआ अंधेरे में ही पास आ बैठी और हौले से सिर सहलाती रही। बुआ? बुआ का हाथ पल भर को थमा, रुंधे स्वर से कहा, रवि तुम्हें नहीं मालूम उस लड़की को दुलराती हूं। अब यह हाथ उस तक नहीं पहुंचता। फिर जैसे कुछ समझते हुए अपने को कड़ा कर कहा, रवि उसके लिए कुछ मत सोचो, उसे अब रहना नहीं है। मैं बुआ के स्पर्श तले सिहर कर कहता हूं, बुआ मुझे ही कौन रहना है। आज वर्षों बाद भुवाली में पड़े पड़े मैं असंख्य बार सोचता हूं कि उस रात मैं अपने लिए यह क्यों कह गया था। सुनकर बुआ को कैसा लगा नहीं जानता। वे हाथ खींच कर उठी, पागल हो गए हो रवि, उसके साथ अपनी बात जोड़ते हो, जिसके लिए कोई राह नहीं रह गई है, कोई और राह नहीं रह गई है। अब आगे रवि, जिसे बचपन में मोहवश कभी डराना नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हूँ, उसकी बीमारी से डरने लगी हूँ। फिर स्वर बदल कर कहा, तुम्हारा ऐसा जीवट मुझमें नहीं कि कहूं डरती हूं। बुआ ने यह कहकर जैसे मुझे टटोला और मैं बिना हिले डुले चुपचाप लेटा रहा। बुआ असमंजस में देर तक मुझे देखती रही, फिर जाने को उठी और रुक गई। इस बार स्वर में आग्रह नहीं, चेतावनी थी, रवि कुछ हाथ नहीं लगेगा, जिसके लिए सब राह रुकी हो उसके लिए भटको नहीं। पर उस दिन बुआ की बात मैं समझा नहीं, चाहने पर भी नहीं। अगली सुबह चाहा कि घूम घूम कर दिन बिता दूं। घोड़ा दौड़ाता लड़िया काटा पहुंचा और उन्हीं पैरों लौट आया। घर की ओर मुंह करते करते न जाने क्यों मन को कुछ ऐसा लगा कि मुझे घर नहीं कहीं और पहुंचना है। चढ़ाई के मोड़ पर कुछ देर खड़ा खड़ा सोचता रहा और जब ढलती दोपहरी में तल्ली ताल की उतराई उतरा तो मन के आगे सब साफ था। मुझे भुवाली जाना था। बस से उतरा, अड्डे पर रामगढ़ के लाल लाल सेबों के ढेर देखकर यह नहीं लगा कि यही भुवाली है। बस में सोचता आया था कि वहां घुटन होगी, पर चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लहराती हवाएं बह बह आती थी। छाह ऊपर उगती है, धूप नीचे उतरती है और भुवाली मन को अच्छी लगती है, तन को अच्छी लगती है। चौराहे से होकर पोस्ट ऑफिस पहुंचा, कॉटेज का पता लगा लिया और छोटे से पहाड़ी बाजार में होता हुआ पाइंस की ओर हो लिया। खुली चौड़ी सड़क के मोड़ से अच्छी सी पतली राह ऊपर जा रही थी। जंगले से नीचे देखा अलग अलग खड़े पहाड़ों के बीच की जगह पर एक खुली चौड़ी घाटी बिछी थी। तिरछे सीधे खेत किसी के घुटने पर रखे कसीदे के कपड़े की तरह धरती पर फैले थे। दूर सामने दक्षिण की ओर पानी का ताल धूप में चांदी के थाल की तरह चमकता था। इस पहली बार भुवाली आने के बाद मैं एक बार नहीं कई बार यहां आया, लौट लौट कर यहां आया, पर उस आने जैसा आना तो फिर कभी नहीं आया। मैं चलता हूं चलता हूं और कुछ सोचता नहीं हूं, ना यह सोचता हूं कि मन्नो के पास जा रहा हूं, ना यह सोचता हूं कि मैं जा रहा हूं, बस चला जा रहा हूं। पेड़ के तने पर लिखा है पाइंस, लकड़ी का फाटक खोलता हूं और गमलों की कतारों के साथ साथ बरामदे तक पहुंच जाता हूं। कारपेट पर हौले हौले पांव रखता हूं कि कम आवाज हो। द्वार खटखटाता हूं और झुकी कमर पर अनुभवी चेहरा इधर बड़ा आता है। जान लेता हूं कि यही पुराना नौकर है। घर में है? बिटिया को पूछते हो बेटा? मैं सिर हिलाता हूं। बिटिया नीचे ताल को उतरी थी, लौटती ही होंगी। मैं बाहर खुले में बैठा बैठा प्रतीक्षा करता हूं। मन्नो अब आ रही है, आने वाली है, आती ही होगी। थक कर फाटक की ओर पीठ कर लेता हूं। जब यह सोचूंगा कि वह देर से आएगी तो वह जल्दी आएगी। घोड़े की टाप सुन पड़ती है। अपने को रोक लेता हूं और मुड़कर देखता नहीं। बाबा, पुकार का सा स्वर, लगा कि दो आंखें मेरी पीठ पर हैं। उठा, बढ़कर मन्नो की ओर देखा। आंखों में ना आश्चर्य था, ना उत्कंठा थी, ना उदासीनता ही, बस मन्नो की ही आंखों की तरह वह दो आंखें मेरी ओर देखती चली गई थी। बाबा, बूढ़ा नौकर लपक कर घोड़े के पास आया और लाड़के से स्वर में बोला, उतरो बिटिया, बहुत देर कर दी, और हाथ आगे बढ़ा दिया। मन्नो सहारा लेकर नीचे उतरी। तनिक अम्मा को तो बुलाओ बाबा, मेरा जी अच्छा नहीं। सुख तो है बिटिया? चिंता का यह स्वर सुनकर बिटिया जरा सा हंस दी, फिर रुककर लंबी सांस भरकर बोली, अच्छी भली हूं बाबा, बड़ी अम्मा से कहो बिछौना लगा दे। बाबा ने बिटिया के लिए कुर्सी खींच दी, फिर सहम कर पूछा, बिटिया लेटोगी? हाँ बाबा। इस बार मन्नो ने झिझक से बाबा की ओर देखा नहीं, जैसे कोई अपराध बन आया हो। फिर मेरी ओर झुककर कहा, क्या बहुत देर हुई? नहीं, मैं सिर हिलाता हूं पर आंखें नहीं। ठहर कर अधिकार से पूछता हूं, क्या जी अच्छा नहीं? मन्नो ने पल भर को थकी थकी पलकें मूंद ली और कुछ बोली नहीं। बूढ़ी दासी दौड़ी दौड़ी शॉल लिए आई और कंधों पर ओढ़ाकर जैसे अपने को ही दिलासा देने के लिए कहा, बिटिया ख्याली क्यों घबराने लगी, अभी सब ठीक हुआ जाता है, इनके लिए चाय भेजूं? मन्नो एकदम कुछ कह नहीं पाई, फिर कुछ सोचकर बोली, अम्मा पूछ देखो, पिएंगे तो नहीं? मैं कुछ ठीक ठीक समझा नहीं, व्यस्त होकर कहा, नहीं नहीं मुझे अभी कुछ भी पीना नहीं है। मन्नो ने जैसे ना सुना ना मुझे देखा ही। फिर जैसे अम्मा को मेरे परिचय की गंभीरता जताने के लिए पूछा, चाची तो अच्छी है, अभी चाचा लौटे तो ना होंगे? बड़ी माँ झट समझ गई मन्नो की चाची के यहां से आया हूं, बोली, बेटा आने की खबर देते तो मन्नो के लिए कुछ मंगवा लेती। अम्मा अंदर जाके देखो ना, मैं थकी हूं, अब बैठूंगी नहीं। मैं लज्जित सा बैठा रहा, कुछ फल ही ले आता। मन्नो कुछ देर मेरे चेहरे पर मेरा मन पड़ती रही, फिर धीमे से ऐसे बोली, मानो मुझे नहीं अपने को कहती है, यहां ना कुछ लाना ही ठीक है, ना यहां से कुछ ले ही जाना। मैं अपनी नासमझी पर पछता कर रह गया। मन्नो अंदर चली तो आप ही आप मैं भी साथ हो लिया। कंबल उठाकर बड़ी माँ ने बिटिया को लिटाया, बाल ढीले करते करते माथे को छुआ और मेरे लिए कुर्सी पास खींचकर बाहर हो गई। मन्नो मन्नो बोली नहीं, दुबली सी बाह तनिक सी आगे की और फिर एकाएक कुछ सोचकर पीछे खींच ली। आज जब स्वयं भी मन्नो सा बन गया हूं, 100 बार अपने को न्योछावर कर उसी क्षण को लौटा लेना चाहता हूं। मैं कुर्सी पर बैठा बैठा क्यों उस बाह को नहीं छू सका था, क्यों उस हाथ को सहला नहीं सका था। उमड़ते मन को किसी ने जैसे जकड़ कर वही उसी कुर्सी पर ठहरा लिया था। क्या था उस झिझक में, क्या था उस झिझकने वाले मन में? रहा होगा यही भय रहा होगा जो अब मुझसे मेरे प्रियजनों को दूर रखता है। उस रात जब जाने को उठा था तो आंखों का मुंह पीछे बांधता था, मन का भय आगे खींचता था। और जब जल्दी जल्दी चलकर डाक बंगले में पहुंच गया तो लगा कि मुक्त हो गया हूं, क्षण क्षण जकड़ते बंधन से मुक्त हो गया हूं। उस अभागी रात में जो मुक्ति पाई थी वह मुझे कितनी फली, चाहता हूं आज एक बार मन्नो देखती तो। रात भर ठीक से सो नहीं पाया, बार बार नींद में लगता कि भुवाली में हूं, भुवाली में सोया हूं। वही पाइंस की बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला कमरा है, मन्नो के पलंग पर लेटा हूं और पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठी बैठी मन्नो अपनी उन्हीं दो आंखों से मुझे निहारती है। मैं हाथ आगे करता हूं और वह थोड़ा सा हंसकर सिर हिलाती हुई कहती है, नहीं इसे कंबल के नीचे कर लो, अब इसे कौन छुएगा। मन्नो मन्नो कुछ कहती नहीं, हंस भर देती है। रात भर इन दुस्वप्नों में भटकने के बाद जगा तो बुआ दिख पड़ी, कुछ हाथ नहीं लगेगा रवि। उस सुबह फिर मैं रुका नहीं, ना डाक बंगले में ना भुवाली में। बस के अड्डे पर पहुंचा तो धूप में बुझी बुझी भुवाली मुझे भयावनी लगी। एक बार जी को टटोला, पाइंस नहीं नहीं कुछ नहीं, लौट जाओ। घर पहुंचकर बुआ मिली, कड़ी चेतावनी वाला खिंचा खिंचा चेहरा था। भरपूर मुझे देखकर जैसे सांस रोके पूछा, कहाँ थे कल? रानीखेत तक गया था बुआ, कह तो जाते। मैं न जाने किस उलझन में खोया कह गया, कहने को बुआ था क्या। दोपहर में फूफा मिले, कल लौटे थे और सदा की तरह गंभीर थे। खाना खाते उन्हें देखता रहा, एकाएक उन्हें प्लेट पर से आंखें उठाकर बुआ की ओर देखते हुए देखा तो सचमुच मैं जान गया कि फूफा के भाई अवश्य ही मन्नो के पिता होंगे। दृष्टि में वही ठहराव था, वही अचंचलता थी। फूफा ने खाने पर से उठते उठते उलझे से स्वर में मुझसे पूछा, रवि बुआ तुम्हारी लखनऊ तक जाना चाहती हैं, पहुंचा आ सकोगे? जी सकूंगा। मैं बुआ और बच्चे नैनी से उतर रहे हैं, मैं पीछे की सीट पर बैठा बैठा विदा हो जाने की आकस्मिकता को सिगरेट के धुएं में भूल जाने का प्रयत्न करता हूँ। चौड़े मोड़ से बस नीचे की ओर मुड़ी, खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ की हरियाली में वही कलवाली भुवाली की सफेदी दिख रही थी। काठगोदाम से लखनऊ, एक रात बुआ की ससुराल रुककर बुआ से विदा लेने गया तो बुआ ने पूछा, कहाँ जाने की सोच रहे हो रवि, कुछ दिन यहीं क्यों ना रुको? नहीं बुआ, बुआ इस नहीं को एकाएक स्वीकार नहीं कर सकी। पास बिठाकर कुछ देर देखती रही, फिर स्नेह से कहा, फिर जाओगे कहाँ? बुआ कुछ पता नहीं, बुआ कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। कुछ रुकते रुकते कहा, रवि तुम्हारे फूफा तो तुम्हें वापस नैनी लौटने को कहते थे। नहीं बुआ, अब तो दक्षिण जाऊंगा पिताजी के पास। बुआ को जैसे विश्वास नहीं हुआ, कुछ याद सी करती हुई बोली, रवि इस बार तुम्हें वहां अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं है, नहीं बुआ, बुआ चाहती थी मुझसे कुछ पूछें, मैं चाहता था बुआ से कुछ कहूं, पर किसी से भी शब्द जुड़े नहीं। स्टेशन पर जाने लगा तो बुआ के पांव छुए। बुआ बहुत बड़ी नहीं है मुझसे, पिताजी की सबसे छोटी मौसेरी बहन होती है, पर दिल में कुछ ऐसा लगा कि बुआ का आशीर्वाद चाहता हूं। बुआ हैरान हुई, फिर हंसकर बोली, रवि तुमने पांव छुए हैं तो आशीर्वाद जरूर दूंगी, बहुत सुंदर बहू पाओ। मैं ना हंसा ना लजाया, बुआ चुप सी रह गई। जिस नटखट भाव से वह कुछ कह गई थी, उसे मानो अनदेखे संकोच ने घेर लिया। टिकट लिया, कुली के पास सामान छोड़कर प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा। आमने सामने कोई गाड़ी नहीं थी, लाइनों पर बिछे खालीपन ने उलझे मन को एकाएक खोल दिया। जो कुछ भी सोच रहा था सोचता चला गया। मन ना भुवाली पर अटका, ना पाइंस पर, ना मन्नो पर, पिछला सब बीत गया लगा। बुआ का आशीर्वाद कल्पना में मुखर हो आया। घर होगा, घर की रानी होगी, मैं होऊंगा। बुआ का आशीर्वाद झूठा नहीं निकला, सच में ही मेरा घर बना। सुंदर घरनी आई और उसे मैं ही ब्याह कर लाया। पर उस दिन जहां का टिकट ले लिया था, वहां की गाड़ी मुझे खींचकर प्लेटफॉर्म पर से नहीं ले जा सकी। गाड़ी आ लगी है, कुली सामान लगाता है और मैं बाहर खड़े खड़े देखता हूं, मुसाफिर, कुली, सामान, बच्चे, बूढ़े। साहिब, गाड़ी छूटने पे 10 मिनट है। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ और सिर हिला देता हूँ कि मैं जानता हूँ। कुली एक बार फिर अंदर जाकर असबाब ऊपर नीचे करता है और साफा ठीक करते हुए बाहर निकलकर कहता है, हरी बत्ती हो गई है साहिब। बत्ती की ओर देखता हूँ और देखता चला जाता हूँ। वही कद है, वही दुबली पतली देह, वही धुला धुला सा चेहरा, वही वही। आवेश से कहता हूँ, कुली सामान उतार लो। साहिब जल्दी करो जल्दी। कुली फिर मेरे सामान के पास है, टिकट वापस कर नया ले लिया। स्टेशन से फल के टोकरे बंधवाए, चाय पी और बरेली के लिए गाड़ी में जा बैठा। जहाँ मुझे जाना है वहीं जाकर रहूँगा। जब मैं ही नहीं रुकता हूँ तो मुझे कौन रोकेगा, क्यों रोकेगा। घर में आगे लॉन में बैठा सर्दियों की ढलती धूप में अलसा रहा हूँ। अंदर से माँ निकली और पास बैठते हुए कहा, बेटा इस बार छुट्टी में आ ही गए हो तो ठहर जाओ, बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता। माँ की बात सुनकर मैं सयाने बेटे की तरह हंसता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि माँ कितना ठीक कहती है। अपनी नौकरी पर रहता हूँ और अकेले आदमी के खर्च से कहीं अधिक कमाता हूँ, फिर क्यों इनकार करूँगा। माँ की आशा के विपरीत बड़ी आवाज में कहता हूँ, माँ जो तुम्हें रुचे वही मुझे भाएगा। बेटा लड़की देखना चाहोगे। हाँ माँ, लगा माँ मन ही मन हंसी। खाने के बाद रात को घूम कर आया तो कमरे में शांति थी, मन में शांति थी। किसी को देखने के लिए कॉलेज के दिनों वाली उतावली जिज्ञासा मन में नहीं रह गई थी। लगा कि अकेले रहते रहते किसी के संग की आशा नहीं कर रहा, उसे तो अपना अधिकार करके मान रहा हूँ। हाथ में किताब लेकर रात को लौटा तो पढ़ते पढ़ते ऊब गया। आंखों के अंधेरे में देखा किसी पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूँ। दूर चीड़ के पेड़ों के झुंड के झुंड दिखते हैं, आसमान सब सुनसान है, अपनी पदजाप के सिवाय कोई आवाज नहीं। एकाएक किसी का स्वर गूंजता है, इधर उधर, और अंधेरे में हिलता एक हाथ आगे बढ़ा बढ़ा आता है मेरे गले की ओर, निकट और निकट। दुबली कलाई, पतली उंगलियां। मैं डरता हूँ, पीछे हटता हूँ और घबरा कर आंखें खोल देता हूँ। उठा खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर झांका। लॉन के दाहिनी हरी घास पर पिताजी के कमरे की लाइट फैली थी। संभला, लंबी सांस लेकर बालों को छुआ तो माथा ठंडा लगा। भयावना सूनापन और अंधेरे में वह हाथ मन से जिसे भुला चुका हूं उसे आज ही याद क्यों आना था, क्यों याद आना था, क्यों दिख जाना था उस हाथ को जो वर्ष हो गए पाइंस की उतराई से उतरते उतरते मैंने अंतिम बार देखा था। छुआ था नहीं कहूंगा, क्योंकि असंख्य बार सोच सोच कर छू भर लेने के लिए वहां आगे करना छू लेना नहीं होता। महीना भर नैनी में रहते हुए बार बार भुवाली से लौटने के बाद जब अंतिम बार मैं मन्नो के पास से लौटा था तो लौट लौट कर उस लौटने को ना लौटना करना चाहता था। तीन बार नीचे उतरा था और तीन बार मुड़कर ऊपर गया था। मन्नो शॉल में लिपटी आराम कुर्सी पर अधलेटी थी। पास खड़े होकर उसकी चुप्पी को जैसे उस पर से उतार देने को उदास स्वर में कहा, कल तो नैनी से नीचे उतर जाऊंगा। मन्नो ने नीचे फैले शॉल को सहज सहज सहेजा, एक महीने पहले वाली दृष्टि मुख पर लौट आई। वही पराया सा देखना, वही दूर दूर सा लगता चेहरा। मन्नो, चाहता हूं मन्नो से कुछ तो कहूं, पर क्या कहूं, यह कि जल्दी लौटूंगा। क्षण क्षण अपने से कहता हूं, आऊंगा, फिर आऊंगा, पर जिस निगाह से मन्नो मुझे देखती है वह जैसे बिना बोल के यह कहे जा रही है कि अब तुम यहां नहीं आओगे। मन्नो, रवि, और बस कठिन सी होकर थोड़ा सा हंसी और हाथ जोड़ दिए नमस्कार। इन जुड़े जुड़े हाथों को देखता रहा, जरा सा आगे बढ़ा कि विदा दूं, पर न जाने क्यों खड़ा का खड़ा रह गया। समझाने के से स्वर में मन्नो बोली, देर होती है रवि। जी भरकर देखने वाली अपनी आंखों को झुकाकर मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर गया। मैं फिर लौटूंगा, फिर, पर क्या सदा के लिए चला जा रहा हूं? मुड़कर पीछे देखा और खिंच कर ठिठक गया। मन्नो वही उसी मुद्रा में बैठी थी, मानो वह जानती थी कि लौटूंगा। साथ पड़ी कुर्सी की ओर संकेत कर कहा, बैठो रवि। स्वर में ना व्यथा थी, ना संग छूटने की उदासी थी, ना मेरे आने का आश्चर्य था। आंखों ही आंखों ने कुछ ऐसा देखा जैसे पूछती हो, कुछ कहना है क्या? मैं अपने को बच्चे की तरह छोटा करके कहता हूं, मन्नो, मन नहीं होता जाने को। मन्नो कुछ देर तक देखती रहती है। मैं चाहता हूं मन्नो कुछ भी कहे तो। गाथा में अभी आप सुन रहे थे कृष्णा सोबती द्वारा लिखित कहानी बादलों के घेरे का दूसरा भाग, जिसे प्रस्तुत कर रही थी आरती श्रीवास्तव।